जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे बाबा प्यार तुम्हारा अमृत वेले उठाता मोहिनी रात में मुझे जगाता प्रेम की घंटी हृदय मंदिर में बजती परमात्मा पुकार में आत्मा सुनती नींद पर होते योग के विजय माया के होते सहज पर अजय आराम नहीं मिलन चाहते बाबा संग आत्मा खिल जाते अपने कहा रात को अलविदा परवान हुआ क्षमा पे फिदा समय से पहले बाबा जगाते नयन खुलते ही मिलन कराते प्रेम में भीगा मन संकल्प मुस्काते माया के बंधन स्वयं कट जाते ठंडी गर्मी बारिश अब तप के साथी मौसम की मार अब ना डराती सोना अब आराम नहीं माया है नींद अब अमृत नहीं विष का साया है कमाई नहीं ये ऊर्जा की चोरी है सुस्ती के धुन में बजी माया की लुरी है तप की राह में मन की हेरा फेरी है जागृत में विश्व कल्याण का सूत्र हूँ ब्रह्म मुहूर्त का प्रहरी मैं शिव पुत्र हूँ सकल विश्व को तप से भरता अमृत वेला में तपस्वी जलता संकल्प से उठता नवयुग की नींव रखता तप के ईंटों से स्वर्णिम स्वराज्य रचता नींद की घड़ी अब बीत चुकी है माया की छाया अब मिट चुकी है वर्तमान में जलती है आत्मा की मशा मैं हूँ जागृत यही मेरा कमाल बाबा की याद में स्वयं को गढ़ता योग विनी से आलस को राख करता मैं अब सो नहीं रहा मैं हो रहा हूँ मैं अब खो नहीं रहा मैं जाग रहा हूँ जाग जा रे योगी मिटा दे आलस के घेरे अमृत वेले बाबा पुकारे देखो बाहें पसारे
यानिश सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने जिसे सब लोग दिन समझते हैं वह आत्म संयमी के लिए अज्ञानता की रात्रि है तथा जो सब जीवों के लिए रात्रि है वह आत्म विश्लेषी मुनियों के लिए दिन है भगवत गीता अध्याय दूसरा 69th श्लोक। जब संसार के लोग सोते हैं तो ज्ञानी जागता है। जो संसार के लिए रात्रि है वो ज्ञानी के लिए दिन है। कौन सी रात? भ्रम की रात, अज्ञान की रात, बंधन की रात, देह अभिमान की रात। इस रात को वो जीतता है। वास्तविक अमृत वेला तब होता है जब भीतर की रात टूटती है। स्थूल रात्रि और स्थूल दिन नहीं, द डार्क नाइट ऑफ द सोल कहा जाता है। द डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसमें आत्मा भटक रही है, भ्रमजाल में फंसी है, वो टूट जाए। Better than all the measures of delightful sound, better than all treasures that in books are found, thy skill to poet were, thou's corner of the ground. कवि उस पक्षी से कहता है जो किताबों में खजाना प्राप्त है उससे कई अधिक अधिक ज्यादा। इस संसार में जो भी आवाजें हैं और उन आवाजों में, उस संगीत में जो सुख मिलता है, उस सुख से कई अधिक ज्यादा तुम्हारी आवाज है। क्यों? तुम्हारी आवाज इतनी सुरीली है। दाउस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि तुम इस धरती से तिरस्कार करते हो, इस धरती से ऊपर उठते हो, इसलिए तुम्हारी आवाज इतनी सुमधुर है। बेटर देन ऑल द ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, जो किताबें में आनंद नहीं है वो तुम्हारी आवाज में है। बेटर देन ऑल द साउंड्स ऑफ, बेटर देन ऑल द डिलाइट्स ऑफ, डिलाइटफुल साउंड, दाय स्किल टू पोएट वेयर दाउस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड। ये कला तुम मुझे सुख सिखाओ। कौन सी कला? इस धरती से ऊपर उठने की कला। ये धरती, ये शरीर, वो धरती है, वो हर चीज जो हमें शरीर में बांधती है, देहभान में लाती है, नीचे गिराती है, इसलिए बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइटफुल साउंड। यदि इसी देह में रहते हुए और इसी संसार में रहते हुए बहुत आगे निकल जाना है तो सबसे बड़ा पुरुषार्थ कौन सा है? इस शरीर से बाहर निकल जाना। शरीर में है परंतु शरीर से पार, शरीर अप्रभावित है। शरीर में कम से कम रहने का अभ्यास, प्यूरिटी है, पूरी मुरली पवित्रता पर है, बड़ी मुरली। धवल क्रांति में शायद ये मुरली रिवाइज हो चुकी है। पवित्रता महासागर है, तीन नदियां इसमें मिल रही है, मनसा वाचा कर्मणा। एक व्यक्ति को नौकरी चाहिए थी, अभी अभी उसकी पढ़ाई पूरी हुई। वो एक एमएलए, एक विधायक के पास जाता है और उससे दरख्वास्त करता है कि मुझे मिनिस्टर के पास ले चलो। उसका परिचित है वो एमएलए, वो विधायक, कहता है ठीक है चलो। और जब दोनों जा रहे होते हैं वो विधायक देखता है बदबू आ रही है बहुत ज़्यादा, और फिर पता करता है वो बदबू उसके मोजों से आ रही है। वो जो युवक आया है और उसे कहता है इस मोजों को बदलो, इस बदबू के साथ मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकता, नए मोजे लेके आओ। गुस्सा करता है उसके ऊपर। वो युवक कहता है ठीक है मैं कल आता हूँ, और दूसरे दिन वो युवक आता है और फिर दोनों चल पड़ते हैं। फिर से वही बदबू। वो विधायक कहता है मैंने तुमको कल भी कहा था मोजे बदल के आना। वो कहता है मोजे मैं बदल के आया हूँ, मैं नए पहन के आया हूँ, और ये उसका बिल भी है। फिर बदबू कहाँ से आ रही है? मुझे पता था तुम यकीन नहीं करोगे, इसके लिए बदबू वाले मोजे साथ में लेके आया हूं दिखाने के लिए। नए तो पहने हैं पर पुराना माल साथ में है, चल रहा। नया जन्म तो लिया है पर पुराने भूत अभी तक साथ चल रहे हैं। जेब में पुराने मोजे बदबू वाले अभी भी रखे हुए हैं, पुराने के प्रति वैराग्य। हिंदी में तीन शब्द है, विराग, वैराग और वैराग्य। इन तीनों में क्या अंतर है? एक है विराग, विराग, एक है विराग। वैराग और वैराग्य, और एक भी है वीतराग, वो तो एक अलग ही है। वीराग अर्थात राग न होने की अवस्था, राग न होने की अवस्था जिसमें राग ही नष्ट हो गया है, चीजें अर्थहीन हो गई है, व्यर्थ हो गई है, रखी है पर उनका कोई प्रयोग नहीं है, ऐसी रखी है क्योंकि उनके प्रति जो आसक्ति थी वो खत्म हो गई। ये विराग जब आचरण में आता है उसे वैराग कहा जाता है, और जो भाषा में शब्द प्रयोग किया जाता है प्रॉपर भाषा में तो शब्द प्रयोग होता है वैराग्य। वीतराग अर्थात न राग न द्वेष, दोनों से परे, साक्षी, न्यूट्रल, अंदर का न्यायाधीश मौन हो गया है, जो निरंतर क्या करते रहता है, दूसरों को जज। साधना का आज का 100 दिनों के लिए 2 दिन बाकी है। लंबा आज का लंबा है थोड़ा। अमृत वेले की विशेषता अ आ ई ई उ ए इतने हैं। मीठे बच्चे क्या अमृत वेले उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी फिर सच्चा सोना बनेगी। पढ़ने की विधि क्या हो? पढ़ते पढ़ते क्या करना है? अनुभव, महसूस, वो सब तो है ही, पर साथ में फर्स्ट स्टेप रीडिंग है। कल रात में भी कहा था। फर्स्ट स्टेप रीडिंग, सेकंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग, थर्ड स्टेप मेमोराइजेशन और फोर्थ स्टेप प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कोई भी चीज़, कोई भी कहीं के, कोई भी बात यदि हम पढ़ते हैं, कोई अगर कहे कि मैं केवल इसे समझता रहूं, तो उसके लिए तो एक जीवन भी पर्याप्त नहीं है। हमें कोर्स भी पूरा करना है, सारी किताब पूरी करनी है। कोई अगर कहता है मैं इसी पैराग्राफ का केवल स्वरूप बन जाऊं, भाव बहुत अच्छा है पर एग्जाम में फेल हो जाएंगे। सारा सिलेबस भी कवर करना है। फर्स्ट स्टेप रीडिंग, फास्ट रीडिंग, सेकंड स्टेप अंडरस्टैंडिंग तो करना ही है, थर्ड उसको मेमोराइज भी करना है। और मेमोराइजेशन के लिए क्या चाहिए? निमोनिक्स। मेमोराइजेशन के लिए क्या चाहिए? कीवर्ड्स। इसमें से कीवर्ड्स कौन कौन से? घृत एक उदाहरण है और दूसरा जंक। आत्मा पर जंक लगी है, जंक को निकालना है। और घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम अच्छा है। ये दो उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों को पकड़ना है कि ये उदाहरण है, इसकी तुलना इससे की गई है, इसकी तुलना उससे की गई है, तो ये बहुत आसान होगा। मेमोराइजेशन, कुछ निमोनिक बना के रखना, कुछ कीवर्ड्स निकाल के रखना, और लास्ट है उसको फिर प्रैक्टिकल में अप्लाई करना। जितना रोज रोज प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है। एक दिन अगर अमृत वेला कर लिया तो अगले दिन पावर बढ़ जाती है, तीसरे दिन और बढ़ जाती है। बार बार जो फर्स्ट आते हैं, बार बार जो विजयी होते हैं, बार बार जिनको सफलता मिलती है, उनको क्या हो जाता है? एक नेक्स्ट लेवल का कॉन्फिडेंस उनमें आ जाता है। इसलिए छोटी छोटी जीत को अर्जित करना है। अब ये पैराग्राफ पढ़ा, लक्ष्य रखना है इसको पूरा के पूरा मैं कई बार पढ़ूँ। मीठे बच्चे अमृत वेला उठ बाप की याद का घृत रोज डालो तो आत्मा रूपी ज्योति सदा जगी रहेगी। घृत डालने के लिए सवेरे का टाइम बहुत अच्छा है। आत्मा रूपी ज्योति को प्रज्वलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही आत्मा की जंक निकलेगी, फिर सच्चा सोना बनेगा। अपनी ही आवाज़ को खुद रिकॉर्ड करना है और कई बार सुनना है, अलग अलग समय पर सुनना है और बार बार पढ़ना है। याद रखने की विधि क्या है? बार बार पढ़ना। कोई ये नहीं कह सकता मुझे याद नहीं रहता है। इस संसार में केवल दो ही प्रकार की मेमोरी है, ट्रेंड मेमोरी, अनट्रेंड मेमोरी। बस इनको बहुत याद रखना रहता है, हमको याद नहीं रहता है। कल रात में भी कहा था ना, सिलेक्टिव हियरिंग लॉस। पेशेंट होते हैं ना, आते हैं हॉस्पिटल में, उनको कितना भी पूछो, उनके रिश्तेदार रहते हैं, कहते हैं इनको सुनाई नहीं देता। क्या तकलीफ है? सुनाई नहीं दिया। कब से तकलीफ है? सुनाई नहीं दिया। क्या बीमारी है? कुछ तो बताओ। कुछ सुनाई नहीं देता, कान में जोर जोर से बोलना पड़ता है तब जाके थोड़ा सुनाई देता है। कुछ भी सुनाई नहीं देता है। और लास्ट में जब उनसे कहते कि 4 दिन भर्ती करना पड़ेगा, तुरंत सुनाई देता है खर्चा कितना आएगा। अब तक का कुछ भी सुनाई नहीं दिया है। सिलेक्टिव हियरिंग लॉस, वैसे सिलेक्टिव मेमोरी लॉस। मुरली का कुछ याद नहीं रहता है, पर वस्तुओं की कीमत सब याद रहती है। जहां पैसा आ जाता है वो सब याद रहता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? बहुत गहरा मनुष्य का लगाव है धन में, बहुत गहरा, जिसका जिससे वो जानता तक नहीं। इसलिए वस्तुओं की जहां बात आती है और पैसों की बात आती है, उसे सब प्राइजेस याद रहती है। मोजा कितने का है वो उसे याद है, जूते उसे कितने के है याद है, जबकि उसको 10 साल हो गए फिर भी याद है ये साड़ी कितनी कितने की है, कहाँ से ली थी, और उस दुकानदार ने 500 बोला था और हमने 400 में कैसे ले ली थी वो भी याद है। ये मेमोरी इतनी शार्प है कि इसमें एज का कोई प्रभाव नहीं है। तो वैसा ही गहरी आसक्ति और लगाव परमात्म शब्दों से, परमात्म वाक्यों से हो जाए, कि उसे बार बार हम पढ़े, बार बार हम रिवाइज करें, बार बार दूसरों को सुनाते रहे, बताते रहे। अगर नहीं भी है कोई, इमेजिनरी ऑडियंस को देखो अपने सामने। इमेजिनरी काल्पनिक सभा है, मीठे बच्चे शिव बाबा की नंबर वन श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद कर तो तुम्हारा बेड़ा पार। उदाहरण कौन सा दिया? बेड़ा। उदाहरण यहां पर भी एक उदाहरण है, बोट। अभी बेड़ा गर्क है, फिर बेड़ा क्या हो जाएगा? पार। बेड़ा और बेड़ी कहते हैं सुबह का साई। फिर से उदाहरण, वो है ये शिव ही सुबह का साई है। व्यापारी लोग सुबह को दुकान के आगे माथा टेक कर फिर अंदर घुसते हैं। फिर से उदाहरण है, सारी मुरलियों में क्या है? उदाहरण ही उदाहरण है, क्योंकि आमदनी होती है। यहां तक कि जिम में जाते हैं तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, जिम में वो जो जिम के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको भी कुछ कुछ लोग प्रणाम करते हैं, क्योंकि वही उनका तपस्या घर है, वो उनकी साधना है। संगीत को लोग कितना मानते हैं, संगीत गीत, वो संगीत के वाद्य। पर जैसे ही कला में बिजनेस जब आ जाएगा तो कला का पतन होगा, और यही हुआ है संसार में। कला में क्या घुस गया? बिजनेस, पैसा। पहले ऐसा नहीं था, इसलिए आज कौन ऐसा गायक है कि जो गाता है और बारिश आ जाती है? कहाँ गए वो तानसेन और वो मीरा? एक पत्रकार रामायण के सेट पर पहुंचा और देखा कि राम जी घायल पड़े हैं, कलाकार। लक्ष्मण जी सांस फूल रही है, सीता मूर्छित पड़ी हुई है, वो कुटिया टूट फूट गई है, पर्णकुटी, सारे पेड़ उध्वस्त हो गए हैं यहां वहां। केवल जो एक्टर राम जी थे उनका असिस्टेंट बैठा था। पत्रकार ने पूछा उससे, ये सब क्या है? उसने कहा, युद्ध हो गया है यहीं पर जंगल में, अभी तो रावण का सीन आया नहीं है। उसने कहा, सीन युद्ध यहीं चालू हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डायरेक्टर भी बेहोश पड़ा हुआ है, क्योंकि पेमेंट नहीं मिली है राम जी को। पेमेंट तो मिलनी चाहिए ना। उसी चक्कर में लड़ाइयां हो गई, राम जी घायल, सीता घायल, लक्ष्मण जी बेहोश। कला में क्या घुस गया? बिजनेस। मीठे बच्चे शिव बाबा की नंबर वन श्रीमत है, सवेरे सवेरे उठ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार। पहला उदाहरण बेड़ा। व्यापारी लोग सुबह को दुकान के आगे माथा टेक कर फिर अंदर घुसते हैं, क्योंकि आमदनी होती है। आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साहिब बेड़ा बन लाई, ऐसे कहते हैं ना। साईं बाबा है रात को दिन बनाने वाला। रात को, रात का साईं कौन सा है? रावण। वासनाओं का साईं कौन है? रावण। इच्छाएं तृष्णाओं का साईं कौन है? रावण। विकारों का साईं कौन है? रावण। रात को दिन बनाने वाला साईं बाबा यह एक ही है और बहुत भोला है, नाम ही है भोलानाथ। भोला भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को वर्षा दे विश्व का मालिक बनाते हैं। तुम अपने बाप को सवेरे सवेरे याद करते हो तो एकदम बेड़ा पार हो जाए। तो क्या क्या सुना? उदाहरण कौन सा है? तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा क्या सुना? सुबह का साई। तीसरा क्या सुना? जैसे दुकानदार होते हैं उनकी आमदनी होती है, वैसे सुबह का समय किसका है? कमाई का समय। छोटा सा पैराग्राफ है पर उसमें तीन बातें हैं, उसको खींच लेना है बस। तो पढ़ने की टेक्निक को चेंज करना है, पढ़ते पढ़ते उदाहरण ढूंढना है, पढ़ते पढ़ते कीवर्ड्स ढूंढना है, ताकि मेमोराइज भी हो। अगर हम केवल ये लक्ष्य रखें कि मुझे तो केवल याद करना है, तो पूरी एक ही मुरली दिन भर पढ़ते रहो, और रात को अगर पूछे मुरली में क्या था तो कुछ भी याद नहीं। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो जीवन भर चलेगा, अंडरस्टैंडिंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसलिए ये तो लक्ष्य रखना ही नहीं कि मुझे पूरा ही समझना है, इसको भूल जाओ, पूरा नहीं समझ में आएगा। फास्ट रीडिंग, स्पीड रीडिंग, फटाफट फटाफट पढ़ना। एक मुरली चाहे 6 पेज की हो, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। बहुत फास्ट खट 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 कीवर्ड्स इधर से उठाया, इधर से उठाया और छोड़ दो। अगर ये सोचेंगे मैं एक लाइन पढ़ता हूँ फिर चिंतन करता हूँ, उस बीच में पता नहीं कितने फ़ोन कॉल और मैसेजेस आ जाएंगे और कितनी बुद्धि भटकेगी। जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे पढ़ने के लिए उतनी बुद्धि भटकेगी, जितना कम समय में पढ़ेंगे उतना बुद्धि एकाग्र रहेगी। इसलिए इस संसार में जो वोरैशियस रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक ही दिन में एक किताब पूरी कर देते हैं। वो ये लक्ष्य नहीं होता है उनका, सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ ही याद रखना है। पढ़ना सब है, याद सब कुछ नहीं रखना है। वो तो फर्स्ट रीडिंग है ना, इसको ये मत समझो ये अंतिम रीडिंग है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, सुबह एक बार पढ़ लिया, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, वेरी फास्ट। पूरी ये किताब की किताब एक दिन में पढ़ लो, अमृत वेले की। याद रहने का तो लक्ष्य ही नहीं रखना है। जो चीज एकदम थक से इधर कर देगी ना, अंदर चली जाएगी, वो याद रह जाएगी। फिर भोलेनाथ भी कहा, एक ही पैराग्राफ में कितनी बातें आ गई। अमृत वेले की विशेषता, बाप कहते हैं रात को जागो तुम्हारी तबीयत खराब नहीं होगी, योग से तो और ही बल मिलेगा, सुदर्शन चक्रधारी बन चक्र फिराओ। हे नींद को जीतने वाले लाडले बच्चे, हे निद्राधीश जीत, हे गुड़ाकेश अर्जुन, हे अर्जुन अभी अभी सुना मुरली में, नींद पर पुरुषार्थ कैसे होगा। लोग पूछते हैं खाना क्या है, नींद कितनी करनी है, पूछते ही रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, मुख्य बात है सवेरे उठकर अल्प को याद करो, यह वेला सोने की नहीं है। इस उपाय से ही विकर्म विनाश होंगे, और कोई उपाय नहीं। बाप तुम बच्चों के साथ कितना वफादार है, कभी तुमको छोड़ेंगे नहीं, बाप ही है, आए ही है सुधार कर साथ ले जाए। याद की यात्रा से ही तुम सत्व प्रधान बनते। भक्त लोग भी सवेरे सवेरे उठते, माला यादि फेरते, तुम बच्चों को सवेरे उठ बाप को याद करना चाहिए। विकर्म विनाश के लिए योग अग्नि चाहिए। योग अग्नि के लिए क्या करना है, बीच बीच में आग को देखते रहना है। आग होती है ना, उसको देखना है कैसे जलाती है सब कुछ। हर दिन याग आग का दर्शन करना है, एक बार तो आग का दिखना ही है कि ये आग है कचरे को जला रही है, ऐसी अग्नि मुझे प्रकट करनी है। हे नींद को जीतने वाले, आत्मा को शरीर को आराम चाहिए, नींद नहीं। नींद एक माध्यम मात्र है, टाइम वेस्ट। योगी योग निद्रा में रहता है, जागृत ही रहता है निरंतर। तो उदाहरण कौन कौन से दिए, एक भक्तों का उदाहरण, दूसरा नींद को जीतने की बात, और तबीयत की बात। तबीयत भी अच्छी रहेगी सुबह सुबह उठोगे तो। अगला, मीठे बच्चे रोज अमृत वेले ज्ञान योग की वास धूप जलाओ तो विकार रूपी भूत भाग जाएंगे। वास्तव में जलाना है अगरबत्ती को और देखना है कैसी चेंज हो जाता है। अभी बारिश आ रही है अचानक, तो बारिश आने के बाद का मौसम टोटल चेंज। अमृत वेले बाप की याद अच्छी रहती है, कहते सिमिर सिमिर सुख पाओ। भक्त लोग भी कहते राम सुमिर प्रभात मन मोरे। हे रूहानी योद्धा तुम सदा श्रीमत पर चलते रहो। हे रूहानी योद्धा, आत्माभिमानी मन बाप को सवेरे से उठ बाप की याद में रहने का अभ्यास डालो तो माया पर विजय प्राप्त कर सकते। याद की मीठी युक्ति माया जीत बना देगी। पवित्र होने के लिए याद के सिवा और कोई उपाय नहीं है। लंबा समय बैठने का अभ्यास डालना है, एक ही मुद्रा में 3 घंटे जो बैठ सकता है उसे आसन जयी कहा जाता है। 3 आवर्स अधिष्ठान, कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाना है, 15 मिनट, आधा घंटा, 45 मिनट्स, 1 घंटा, और 15 मिनट आगे, और आधा घंटा आगे। बैठे तो बस बैठे, 5 मिनट और। अपने मन को क्या कहना है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ टूट रहा है, चिंता नहीं करो, बैठे बैठे आज तक किसी का फ्रैक्चर नहीं हुआ है। बैठने का अभ्यास, योगी अर्थात बैठा हुआ, हिमालय की तरह स्थिर बैठा हुआ है। धम्मपद में आता है, बुद्ध देख रहे हैं, उनका एक शिष्य बैठा हुआ है, उसकी महिमा करते हैं, वाह जैसे हिमालय अड़िग खड़ा है, योगी बैठा है स्थिर अचल, जरा हलचल नहीं शरीर की। अगला, मीठे बच्चे अमृत वेले उठ बाप से मीठी मीठी बातें करो तो शरीर का भान खत्म हो जाएगा। सिमरन करते करते अंत मति सो गति, कहीं ना कहीं एक मुहावरा आएगा, उस मुहावरे को पकड़ो। कहीं कोई एक कहानी आएगी, उस कहानी को पकड़ो। ऐसी प्रैक्टिस करनी है जो अंत में देह भी याद नहीं, अमृत वेले की विशेषता। मीठे बच्चे दिन में भल काम करो परंतु अमृत वेले 2 से 5 बजे तक बैठ कर याद करो तो बहुत सुख फील होगा। मनसा वचा कर्म ना, सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने के लिए अमृत वेला विशेष एकांतवासी बनो। रूहानी कमाई करने वाले शरीर निर्वाह करते हुए भी सुबह उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करते आत्मा उड़ती रहेगी और बाप समान रहम दिल पर अपने ऊपर और सर्व के ऊपर रहम करेंगे। सबको बाप का परिचय देने बहुत ऐसे निकलेंगे जो पुराने से भी तीखे जाएंगे। मार्जिन है, अमृत वेला याद में बैठने की आदत पड़ जाए तो बड़ा मजा आएगा। क्या आएगा? मजा। जैसे किसी कामी व्यक्ति को काम विकार में बहुत सुख का अनुभूति होती है, जैसे किसी माँ को अपने बेटे में बहुत प्रेम का अनुभव होता है, जैसे किसी धनी व्यक्ति को धन में बहुत आनंद होता है, उसी तरह आत्मा को परमात्मा में इससे भी तीनों से कई गुना अधिक प्रेम का अनुभव होगा। जब तीनों प्रेम एकत्र हो जाएंगे उससे भी कई गुना अधिक। एक कामी पुरुष को देह से जितना मोह, एक लोभी व्यक्ति को धन से जितना मोह और एक माता को अपने बेटे में जितना मोह होता है, ये तीनों ही एकत्र होकर इससे सहस्त्र गुना प्रेम का अनुभव होगा योग में। तो ये सब संसार के बंधन तुच्छ लगेंगे। तो आज बातें, ये एक घृत है, एक दिए का चित्र, सोने से पहले कौन सी जंक लगी है मुझे निकालनी है उस पर चिंतन, भोलेनाथ को एक खत लिखना है। क्या खत लिखेंगे? कि भोला भाला खत लिखना है, बहुत ही भोला भाला, आपका भोला भाला बच्चा आधा सोया हुआ आधा जागा हुआ ब्रैकेट में सच्चाई से खत लिखना है, एकदम सच्चाई से कि बाबा तुम ही आ जाओ, ये अलार्म काम नहीं दे रहा है, तुम ही आ जाओ, अपना त्रिशूल लेकर आ जाओ और इधर लगाओ एक थोड़ा सुबह सुबह 2 बजे। और क्या होता है, शिव के पास डमरू लेके आ गया, डमरू बजाओ, हमारा अलार्म काम नहीं करा, तुम आके कमरे में डमरू बजाओ तो कहीं मैं जागूंगा, तो ही मैं जागूंगा, नहीं तो मैं नहीं जागूंगा, ऐसा उसको बोलो। तो भोला भाला खत लिखना है भोलेनाथ को। फिर हे रूहानी योद्धा, ऐसे इसके आगे का वाक्य लिखने हैं 4-5 कम से कम। हे रूहानी योद्धा, मुरली में आया ना, हे रूहानी योद्धा सुबह सुबह उठ, हे रूहानी योद्धा नींद को जीत, हे रूहानी योद्धा नंबर 1 श्रीमत है, हे रूहानी योद्धा बाप को याद कर तो बहुत मजा आएगा, पास धूप जलाओ तो बहुत मजा आएगा, तो भूत भाग जाएंगे। तो ये अलग अलग होमवर्क है, अभी 3 दिन और बाकी है ना, होमवर्क नहीं दिया हुआ है अव्यक्त मुरली। कल किसको दिया है? नहीं ना, दिशा बहन, सबकी दशा बदल देना। तो कल की मुरली की डेट, आपको कल की मुरली रिवाइज करनी है और अगले 3 दिन की जो मुरली रिवाइज करनी है उसकी स्ट्रेटेजी थोड़ी बदल देते हैं। 21 पॉइंट्स निकालने हैं, ए से लेकर यू तक बिना देखे, 31-3 की। उसके बाजू में एक बहन जी बैठे हुए है, क्या नाम है, वर्षा बहन, उसके आगे की मुरली 21 पॉइंट्स ए से लेके यू तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच ऐसा यू मतलब 21। उसके बाद में और कोई बैठा है नए में, रिया बहन, हाँ, उसके आगे की लास्ट 21 पॉइंट्स। और वो मुरली क्या करना है, पूरा घोट लेना है, फर्स्ट टाइम पढ़ो ऐसे ही पढ़ो, फिर सेकंड टाइम पढ़ो, फिर थर्ड टाइम पढ़ो, पढ़ते रहो, फिर थक गए तो एक बार फिर से पढ़ लो, फिर बोर हो गए तो छोड़ो, फिर थोड़ी देर के बाद पढ़ लो, फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, ए बी सी डी लिख देना, फिर ए से ढूंढो क्या क्या मिल रहा है, बी से ढूंढो क्या क्या मिल रहा है, सी से कुछ है क्या, ऐसे कितने 21 फ्लैश कार्ड्स। और मुरली में तो कहा ही है रात को, रात नींद को जीतने वाले, सोने तो टाइम वेस्ट ही है पूरा। हाँ, इतना टफ, टफ विफ कुछ नहीं होता है। आज की कविता,
ओम शांति। आज की कविता का शीर्षक है जाने कहाँ गए वो दिन। तो इसमें कुछ ऐसी बातें अनुभव होंगे, तो वो बातें जब सुनाई जाएं तो आप वो सीन इमर्ज करो तो उसकी अनुभूति होने लगेगी। जाने कहाँ गए वो दिन, जब ज्ञान में चले थे तो कितना खुशी और नशे में उड़ते थे। अनुभव है ना सबका। अब उस नशे और खुशी को याद कर ही रह जाते हैं। जाने कहाँ गए वो दिन, जब पहली बार मधुबन आए थे, ऐसा लगा मानो स्वर्ग में आ गए हैं, और सब सुख अनुभव करते ऐसा लगा जैसे कि सुखों के सागर में समा गए। अनुभव है ना सबका। जाने कहाँ गए वो दिन, अब भी उस सीन को इमर्ज करो। अब आगे की पॉइंट में ये बात बताई गई है कि अब जो सुनाएंगे उस सीन को इमर्ज करना आप सभी। जब दादियाँ एक एक को मिलती, दृष्टि देकर नज़र से निहाल करती थी, अपने सामने इमर्ज कर लो, असीम प्यार कर बाबा की भासना दिलाती थी। जाने कहाँ गए वो दिन, इमर्ज करो वो सीन। जरा सभी इमर्ज के साथ साथ अपना मुख भी खोल लेना। जब दादियाँ डाइनिंग हॉल में मक्खन मानी खिलाती थी, खोलो मुख सभी हैं, और बाबा अनुभूति बाबा अनुभूति कराए ईश्वरीय परिवार की भासना दिलाती थी। आ गई ना सबके मुख में मक्खन मानी। जाने कहाँ गए वो दिन, जब सारा दिन सेवा करते करते कभी नहीं थकते थे। बाबा करा रहा है, चला रहा है, शक्ति भर के उड़ा रहा है, ऐसा अनुभव करते थे। जाने कहाँ गए वो दिन, फिर से सीन इमर्ज करो अभी आगे किसी बात में। जब अव्यक्त बाप दादा से एक एक पर्सनल मिलते थे, आप में से शायद कमी होंगे जो पर्सनल बाबा से मिले, जरा हाथ उठाएं। अव्यक्त बाप दादा से जो पर्सनल मिले एक एक, बहुत थोड़े लोग हैं, मैंने 5-7 लोग हैं, दृष्टि तो बहुतों ने ली है लेकिन पर्सनल कमी मिले हैं जो यहाँ हैं। तो जब अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मिलते थे, दृष्टि दे, वरदान दे, हाथ में हाथ दे, शक्ति भर देते थे, और टोली खिलाए कर तो ऐसा लगता जैसे कि फूल से खिल जाते थे। ओम शांति।
मन जीते तो जगत जीत है, मन मंदिर में शिव संगीत है, मन मंदिर में शिव संगीत है, मन से हारे हार है, मन से हारे हार है, मन सधे तो जीवन उपहार है, मन सधे तो जीवन उपहार है। मन से बंधन मन से मुक्ति, मन में राग मन में विरक्ति, मन ही करता मन बेहाल, मन ही बुनता मोह का जाल, मोह मिटे तो मोह जीत है, मन मंदिर में शिव का गीत है, मन मंदिर में शिव संगीत है, मन जीते तो जगत जीत है, मन मंदिर में शिव संगीत है। मन पवन सा चंचल, कैसे थमे ये हवा का महल। मन पवन सा चंचल, कैसे थमे ये हवा का महल। मन अश्व सा बेलगाम, कैसे थामे श्रीमत की लगाम। काहे मोहे भटकावे माया जाल में, काहे न नाचे मन शिव ताल में। मन जीते तो जगत जीत है, मन मंदिर में शिव संगीत है। मन मना भव का मंत्र महान, समझाते हमें शिव भगवान। भुला दो अब देह का भान, छोड़ विकारों का ये जहान। मिटा दो माया के तूफान, जगाओ आत्मा का स्वमान। माया मिटे तो माया जीत है, मन मंदिर में शिव की प्रीत है। मन मंदिर में शिव संगीत है। मन जीते तो जगत जीत है, मन मंदिर में शिव संगीत है। मन से हारे हारे है, मन सधे तो जीवन उपहार है। मन मना भव, 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 मन